ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। कौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, ओम नमो शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हमें पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 12 भक्ति योग द डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिवाइज कर रही हूँ कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट वर्स में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान हम आपके साकार रूप में भक्ति करें या निराकार रूप का ध्यान करें, कौन सा रास्ता बेस्ट है। अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है भगवान से। तो भगवान ने अर्जुन को क्लियरली रिप्लाई किया कि निराकार वाला रास्ता मुश्किल है, ट्रबलसम है, साकार रूप में मेरी भक्ति करना बहुत सरल है, और मैं चाहता भी हूँ कि तुम साकार रूप में मेरी भक्ति करो। और फिर भगवान ने आगे बताया कि जो व्यक्ति मेरे साथ नित्य निरंतर अविचलित भाव से मेरे साथ जुड़ा रहता है, मैं उसको सरलता से इस जन्म मृत्यु के साइकिल से शीघ्र ही निकाल देता हूँ। फिर बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट ऑप्शंस दी भगवान ने हमें। 8th वर्स में भगवान ने हमें पहली ऑप्शन दी कि पहली ऑप्शन है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए, और सेकंड ऑप्शन है कि अगर तुम्हारा मन भटकता है, तुम मुझसे अभी प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने की डिजायर करो। फिर 10th वर्ष में भगवान ने हमें फिर से समझाया कि अगर ये भी नहीं हो रहा है तो भगवान के लिए सेवा कर लो। मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो ना, भगवान की सेवा कर लो। फिर 11th वर्ष में ये भगवान ने कहा कि भगवान के लिए हमसे कर्म भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो और आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। फिर 12th वर्ष में भगवान ने कहा कि अगर ये भी नहीं हो रहा है, कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग, ये भी नहीं तुम कर पा रहे हो, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि ध्यान लगा लो, मेडिटेशन कर लो। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ज्ञान लेने की कोशिश कर लो, कुछ किताबें पॉजिटिविटी के पढ़ लो, स्क्रिप्चर्स पढ़ लो। मतलब भगवान हमें ये गाइड कर रहे हैं, अभी कुछ तो कर लो, क्योंकि भगवान हमें समझा रहे हैं, बार बार हमें गाइड करते हैं कि अगर तुम डिवोशन में कुछ भी करने की कोशिश करते हो ना, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी स्टेप्स लेते हो, भक्ति में आगे बढ़ते हो, तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है। ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी 1-2 साल से रेगुलर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिलती है, मन की शांति मिलना शुरू हो जाती है ना। और मन शांत होता है तो परमात्मा की आवाज सुनाई देती है, और ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारे अंदर इतना शोर होता है, इतना दुनियादारी की आवाजें होती हैं अंदर, इतना हम सोचते रहते हैं, इतना कुछ भरा होता है हमें कि हमें परमात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन जब हम डिवोशन में आगे बढ़ते हैं, भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ स्टेप्स लेते हैं, सबसे पहले हमारा मन शांत होना शुरू होता है, और मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली हमें परमात्मा की आवाज क्लियरली हमें सुनाई देती है, और धीरे धीरे हम सब की प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हम आज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले जो वर्सेस है ना, 15 और 16, इन दो वर्सेस में भगवान बता रहे हैं हमें कैसे डिवोटीज मुझे पसंद है। भगवान अपनी अब अपनी चॉइस रख रहे हैं कि मेरे जो फेवरेट डिवोटीज हैं उनमें कौन से गुण होने चाहिए, है ना, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो कैसे होते हैं। तो हमें भगवान के फेवरेट डिवोटी बनना है तो हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं कि हम कैसे बने। तो नेक्स्ट वर्सेस 15 और 16 हमें ध्यान से सुनने हैं। हाँ जी ममता जी, पढ़ लो 15 वर्स पढ़ना हमने।
हरी हरी बोल। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, क्या भगवान इसमें समझा रहे हैं हमें, देखो संभाव रहता है। संभाव कौन रहता है? देखो वर्ड पे ध्यान देना है कि संभाव वर्ड कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत कॉमनली इसको यूज कर लेते हैं, है ना, कि हम संभाव में रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी हमें झटका लगता है ना तो हमें समझ आ जाता है कि नहीं, है ना। सुख में तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है तो हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ हमारे अंदर से निकल जाता है। जो संभाव में रहते हैं ना, मतलब उसका मन हायर टेस्ट में लग गया, अब बाकी चीजें उसको बॉदर नहीं करती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भगवान हायर स्टेज के डिवोटीज के करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। ये वो लक्षण है उन लोगों में होते हैं जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो हमें उस तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है। फ्रेंड देखो ये 100% की स्टेज है, हम में से कोई भी नहीं अभी यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हमें थ्योरी में पता लगेगा कि भगवान क्या चाहते हैं, कि भगवान अपने जो भगवान के स्पेशल डिवोटीज होते हैं, भगवान उनके प्रति क्या भाव रखते हैं, है ना, भगवान को कैसे डिवोटीज पसंद है, भगवान क्या चाहते हैं कि हम लोगों में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो हमें कम से कम थ्योरी में तो पता लगना चाहिए, है ना। ये 100% की स्टेज है। अगर हमें ये सुनकर हम ये एक्सपेक्ट करने शुरू हो जाएं कि हम सब कुछ ये एक ही दिन में कर लेंगे, तो हम ये सब कुछ एक ही दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज में हमें चेंजेस आती हैं। तो हमें इसको अपनी हाईएस्ट एस्पिरेशन की तरह समझना, इस तरफ हमें बढ़ना है, हमें लक्ष्य बनाना है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें किस तरफ बढ़ना है, भगवान क्या कह रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। मतलब भगवान को कौन से लोग प्रिय हैं, जो किसी को भी मुश्किल में नहीं डालता, कोई ऐसे कार्य नहीं करता जिससे किसी को नुकसान हो। मतलब वो व्यक्ति ऐसे कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को मन को दुख पहुंचे, जिससे किसी को नुकसान हो। और कोई और अगर उसको मुश्किल में भी डालता है ना, है ना, मान लो वो तो किसी को मुश्किल में नहीं डाल रहा, लेकिन अब उस डिवोटी को तो कोई मुश्किल में डाल सकता है ना। तो कोई अगर उसको मुश्किल में डालता है तब भी वो परेशान नहीं होता, वो समझ चुका होता है कि ये सब बाहर का ड्रामा है, अलग अलग रूप में हमारी परीक्षा आती रहती है ना। वो किसी को परेशान करता है, और कोई उसको परेशान करे भी तो भी वो विचलित नहीं होता। तो हमें किस तरह बनना है, हमें ऐसे डिवोटीज बनना है, मतलब जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, मतलब वो जो किसी को दुख ना दे इंटेंशनली, और जो इस तरफ आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो डिवोशन में आगे बढ़ जाते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो किसी और को डिस्टर्ब करने के लिए, किसी और के मन को विचलित करने के लिए ना कुछ कहते हैं, और ना ही वैसा कुछ करते हैं कि दूसरा इंसान, जो दूसरा व्यक्ति है वो डिस्टर्ब हो जाए, ना वो कुछ ऐसा करते हैं। देखो वर्ड्स पे ध्यान देना फ्रेंड्स, की उनका बिहेवियर ऐसा होता है ना कि ना वो दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को विचलित करने के लिए ना वो ऐसा बिहेव करते हैं कि दूसरा विचलित हो जाए, और ना ही वो ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। उनमें हमेशा क्या होती है, एम्पैथी होती है, करुणा होती है, और वो बड़े ध्यान से अपनी एक्टिविटीज करते हैं और बोलते हैं ताकि वो किसी को हर्ट ना कर दें। हाँ जी, और दूसरा पॉइंट है कि ऐसा डिवोटी अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। देखो फ्रेंड, जो सही में एडवांस हो जाते हैं ना डिवोशन में, वो समझ जाते हैं कि वो एक आत्मा है, शरीर अलग है, और उनके अंदर फॉरगिवनेस का भाव आ जाता है, बहुत इंटेंस भाव होता है फॉरगिवनेस का। वो दूसरे लोगों को सोचते हैं ठीक है छोड़ो यार, इमेच्योर है, इनको शायद ज्ञान नहीं है, है ना, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ जाते हैं। ये फीलिंग भी आती है उनके अंदर कि छोड़ो, जैसे मैं भगवान के बेटी हूँ, ये भी भगवान के बच्चे हैं, छोड़ दो, है ना, लेट गो का भाव आ जाता है, है ना, वो छोड़ दो वाले भाव में चले जाते हैं। मतलब वो ग्रजीज नहीं बना लेते किसी के साथ, तो बाकी लोग भी अगर उनको हर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हर्ट नहीं हो जाते, इतनी आसानी से वो लोग हर्ट नहीं होते। फिर श्लोक का नेक्स्ट पॉइंट है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है। तो फ्रेंड्स, सुख और दुख ये लाइफ का पार्ट है, है ना। अब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा परसेंटेज में इतना तो पता चल ही गया ना। जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे क्या लगता था, अच्छा मेरी ये बात पूरी हो जाएगी ना, फिर मैं खुश हो जाऊंगी, बस इसके बाद तो मेरी कोई डिजायर नहीं है और मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी, इसके बाद तो मेरे को लगता मैं कुछ मुझे है ही नहीं, है ना। लेकिन भगवद गीता पढ़ते वक्त मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे पता लगा कि नहीं, सुख दुख लाइफ का पार्ट है, ये सब चलना ही चलना है साथ साथ में। हम सोचेंगे कि नहीं बस अब ये सुख है तो बस यही टाइम चलता रहे, तो वो नहीं होगा। दुख है तो ये दुख ही मेरी लाइफ में आ गया तो बस ये जाएगा नहीं है, तो वो भी नहीं है, है ना। तो सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहता है, लेकिन हमें ये सीखना है, समझना है कि ये सुख और दुख जिंदगी के वैसे ही पार्ट हैं जैसे सर्दी और गर्मी। अब गर्मी चल रही है ना, तो उसके बाद सर्दी आनी है, सर्दी खत्म हो जाएगी तो बस ऐसे ही वो साइकिल चलता रहता है। तो हमारे ये सुख दुख ये भी वैसी साइकिल में चलते रहते हैं। और जो स्पिरिचुअली एडवांस हो जाएगा, भक्ति में जो आगे बढ़ जाएगा, वो समझ जाएगा और अनुभव करेगा ये सब बातें, वो ना सुख में ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, ये नहीं कि अब कुछ मन की इच्छा है वो पूरी होगी तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। कुछ आपको इच्छा थी कि मैं घर बना लूं या मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूं, है ना, या मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ जाए तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाऊं, है ना, वो वाले भाव से वो दूर हो जाता है और ना ही दुख में वो डिप्रेस हो जाता है। जो भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आती है, मेरे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या लगता है फिर लगता है कि यार ठीक है, वो सुख वाला टाइम नहीं रहा था, ये दुख वाला टाइम भी भगवान ने कुछ मेरे को सिखाने के लिए, शायद मैंने कुछ गलती की थी तो भगवान मुझे इसमें भी कुछ सिखा रहे हैं, है ना, तो उसको डील करने आ जाता है आपको, तो हम डिप्रेस नहीं हो जाते इतना। और भय और चिंता, फियर्स, वरीज, ये सारी चीजें, ये सुख दुख, ये मान अपमान, ये सब कुछ एक डिवोटी को, जो प्योर डिवोटी होता है, उसको इफेक्ट नहीं करती, है ना, वो संभाव में आ जाते हैं, वो समझ चुके होते हैं कि ये तो मूवीज हैं, ये चलती रहती है, ये सुख दुख आता रहेगा, क्योंकि वो इंटरनली भगवान के साथ समाधि में रहते हैं, भगवान के साथ इंटरनली वो कनेक्ट रहते हैं, अंदर से भगवान उसको गाइड कर रहे होते हैं, उसको एक अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि मैं हूं ना, भगवान का एक हाथ होता है आपके ऊपर, आपको पता ही नहीं चलता कि वो चीजें कैसे निकल जाती हैं, इतना चाहे हम अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, है ना, या समझ रहे हैं। तो हो सकता है ज्यादा टफ सिचुएशंस हम में से कईयों को आई हैं या आ रही हैं, लेकिन वो चीजें ऐसी निकल जाएंगी कि हमें समझ भी नहीं आएंगी, है ना। पहले हम छोटी छोटी बात पे भी इतना पैनिक कर देते थे, लेकिन अब हम बड़ी बड़ी चीजें भी हमारे आगे से ऐसे निकल जाती है और हम बिल्कुल आराम से उन चीजों को हम डील कर पाते हैं। और जो ऐसे डिवोटीज हैं वो इंटरनली भगवान के साथ समाधि में रहते हैं और अपनी सारी ड्यूटीज को बिना एक्सपेक्टेशन के परफॉर्म करते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे डिवोटीज, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो हमें भी यही गोल बनाना है कि हम भगवान के फेवरेट डिवोटी बन पाए और भगवान भी हमें बहुत प्यार करें ना? और जैसे जैसे हम ये क्वालिटीज परसेंटेज में अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे ना, वैसे वैसे भगवान से हमारे रिश्ते भी स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस श्लोक से हमने क्या समझा कि जो सुख और दुख में संभाव मेंटेन करता है, हम सब जब देखो फ्रेंड्स, जब भक्ति शुरू करते हैं ना हम, जब डिवोशन में नए नए आते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत भक्ति कर रही हूँ, है ना, मैं तो भोग लगाती हूँ, मैं आरती करती हूँ, मैं माला ना जाप करती हूँ, मैं तो सत्संग भी सुनती हूँ, तो अब तो मुझे कष्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ। लेकिन भगवान हमें भगवद गीता में बार बार क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, हमें क्रक्स समझना है कि भगवान हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना, बार बार हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें सीखना है कि चाहे सुख आए या दुख आए जीवन में, संभाव में रहना सीखो। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा पूरे भगवद गीता में कि तुम भगवद गीता पढ़ लोगे या तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हें कभी मैं दुख नहीं दूंगा। भगवान बार बार कह रहे हैं कि सुख और दुख आएंगे जीवन में, सर्दी और गर्मी की तरह आएंगे, लेकिन तुम्हें सीखना है कि सुख और दुख में कैसे तुमने संभाव रहना है। भगवान चाहते हैं हमसे कि हम सुख और दुख में स्टेबल रहना सीखें। अगर हमें प्रभु का प्रिय बनना है, प्रभु के फेवरेट डिवोटी बनना है, तो हमें जो वर्ल्डी लाइफ के तरंगे हैं ना, इससे इफेक्ट होना बंद करना है। तरंगे देखो फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार की होती है, क्रोध की तरंग, ईर्ष्या की तरंग, भय की, चिंता की, सुख की, दुख की, मान की, अपमान की। तो हमें इनसे ऊपर उठना है, तभी हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे, भगवान के फेवरेट डिवोटी हम बन पाते हैं। हमने पढ़ तो लिया अभी ये सब, है ना, तो फिर हम सोचेंगे कि अब ये सब होगा कैसे। तो फ्रेंड्स, जब हम रेगुलर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करते रहेंगे ना, तो अपने आप फील करोगे कि कैसे पहले आप छोटी छोटी बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, है ना, टेंशन में आ जाते थे, छोटी छोटी बातों से पैनिक हो जाते थे, लेकिन अब आप संभाव में आ गए हो। जो मतलब एक दो साल से रेगुलर चल रहे हैं वो फील कर रहे होंगे, बिल्कुल 100% नहीं ये सब कुछ हो गया होगा, लेकिन प्रतिशत में चाहे 2%, 5%, 10%, 20% ये होना शुरू हो गया होगा जो एक दो साल से रेगुलर सिंसियरिटी से चल रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, छोटी छोटी बातों को बुराई का पहाड़ बना लेते थे, अब क्या करते हैं हम पैनिक नहीं करते, ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते। देखो फ्रेंड्स, अभी भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ पे हम भटक जाते हैं, है ना, भटक जाएंगे हम कभी भी, लेकिन डिफरेंस क्या देखना है कि जहां पे हम पहले थे ना, वहां से कम होना शुरू हो गए। तो फाइनली हमें क्या करना है, अपने डिजायर्स को चेक करना है. प्रभु को प्रेम करने वाली डिजायर्स रखनी है. संसार में ऐसे डिजायर नहीं रखनी कि संसार में खो जाओ. प्रभु को प्रेम करने वाली डिजायर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो संसार की जो तरंगे हैं, संसार की जो गतिविधियां हैं, वो कम इफेक्ट करती हैं. फिर ऐसे हमारा ध्यान कहाँ रहता है ना, अपने संसार की एक्टिविटीज में हमारा ध्यान रहता है. लेकिन अगर हम अपना ध्यान शिफ्ट कर देते हैं प्रभु को प्रेम करने में, है ना, प्रभु की सेवा करने में, तो फिर क्या होता है, जो संसार की जो तरंगी है ना, उसका ध्यान फिर भगवान रखते हैं, भगवान फिर हमारा ध्यान रखते हैं, वो इफेक्ट होना कम शुरू हो जाती है वो चीजें. देखो फ्रेंड, संसार की चीजें हमें क्यों इफेक्ट करती हैं? संसार की चीजें हमें इसलिए इफेक्ट करती है कि हमने बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखी हुई है संसार से. सबसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखी होती है. देखो अभी हमें सत्संग करते हुए 10-15 मिनट हुए होंगे बड़ी मुश्किल से, और आप गूगल में सर्च करो इस 10-15 मिनट में, देखो कितने लोगों की डेथ होगी होगी. लेकिन क्या हमें इस चीज का दुख हो रहा है? हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा. अगर हम बात भी करेंगे, अच्छा इतने लोग डेथ होगी, अच्छा इतना बुरा हो गया, बस इतना सा, क्योंकि हमारी उनके साथ अटैचमेंट नहीं है, हम उन लोगों के साथ अटैच नहीं है. तो हमें जो संसार में जो दुख मिलता है ना, वो सरकमस्टांसेस से नहीं मिलता. जो भी हमें संसार में दुख मिल रहा है या सुख मिल रहे हैं, वो सरकमस्टांसेस से नहीं मिलता, वो उस पर्सन के साथ या उस सरकमस्टांसेस से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है या अटैचमेंट होती है, वहां से हमें वो सुख या दुख मिलते हैं. तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म होगी तो आपका मन प्रभु के प्रेम में लग जाएगा. अगर हमारी संसार में अटैचमेंट रही तो हमारा मन प्रभु के प्रेम में लगेगा ही नहीं. तो अगर एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, तो मन ऑटोमेटिकली प्रभु के प्रेम में लग जाता है. तो इसका मतलब अगर प्रभु के प्रेम में मन लग गया, ध्यान लग गया, हमें या आपको एक हायर टेस्ट मिल गया, उत्तम रस मिल रहा है ना. तभी वो उत्तम रस मिल पाता है जब दुनियादारी से अटैचमेंट घटती है और प्रभु से अटैचमेंट बढ़ती है. फिर संसार की चीजों से हमें अट्रैक्शन नहीं रहती, क्योंकि जब परमानंद मिलना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसको चाहे संसार में सुख मिले या दुख मिले, उसका फर्क पड़ना बंद हो जाता है, है ना, उसको हायर टेस्ट मिल जाता है. हाँ जी ममता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो.
हरी हरी बोल. श्लोक नंबर 16. मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. श्लोक नंबर 16. मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, चिंता रहित है, दक्ष है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है. हरी हरी बोल.
हाँ जी, तो फ्रेंड्स, भगवान इन श्लोकों में अपने फेवरेट डिवोटीज हमें करैक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. तो इस श्लोक में भी उन्होंने कुछ और लक्षण बताए हैं अपने शुद्ध भक्तों के, उन लोगों के जो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हैं. तो इसको हम एक एक करके हम इसको समझते हैं, इन लक्षणों को. तो पहले क्या बताया श्लोक में, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है. तो ये जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, सामान्य कार्यकलाप क्या है? सामान्य कार्यकलाप मतलब देखो, वर्ल्डली लाइफ में क्या होता है, एक लिस्ट बना रखी होती है हम लोगों ने, समाज ने, कि इतनी उम्र में डिग्री मिल जानी चाहिए, इतनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, इतनी उम्र में बच्चा हो जाना चाहिए ना, इसके बाद ये मिलना चाहिए, इसके बाद वो मिलना चाहिए. मतलब कोई इस लिस्ट का एंड नहीं है. और जब वैसा नहीं होता तब फिर एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है. जो जो हमने सोचा होता है ना, तो वैसा तो लाइफ चलती नहीं. और जब वैसा नहीं होता जो जो हमने सोचा हुआ है, फिर क्या होता है, फिर एक इंसान डिप्रेस हो जाता है. फिर क्या होता है, फिर आ जाता है कंपैरिजन कि मेरे फ्रेंड को तो इतनी बड़ी जॉब मिल गई, मुझे नहीं मिली. और भी बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं कि मेरा तो घर छोटा है, उसका बड़ा घर है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है. लेकिन जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो समझ चुके होते हैं कि सबकी अपनी किस्मत है, सबके अपने कर्माज हैं और सबकी अपनी यूनिक जर्नी है. मुझे अपने कर्मों पे फोकस करना है, भगवान ने क्या देना है, कब देना है, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ. जो एक भक्त होता है ना, वो बिल्कुल जो कंपैरिजन हैं, जो ईर्ष्या है, इन सब चीजों से बाहर आ जाता है ना. वो एक समझ चुका होता है ये मेरे कर्म है. अगर कोई व्यक्ति विशेष मेरे से ज्यादा कोई अच्छा कर रहा है तो वो उसके कर्म है. और एक चीज और है ना फ्रेंड, देखो कई बार हम सोचते हैं हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे जेलसी करते हैं। जब हम ये बोल रहे होते हैं ना कि वो मुझसे जेलसी कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ये चीज कर रही हूँ या मैं बेस्ट करती हूँ, तो उसको वो शायद मेरी तरह बनना चाहता है, या जैसे हमारा कॉमन ये बात होती है कि वो व्यक्ति विशेष मेरे से ईर्ष्या करती है या करता है ना। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एक बात समझ लें, या ईर्ष्या करते हैं या मुझे नजर लग जाती है ना, ये एक दो बातें हमारी बहुत कॉमन होती है कि मेरे को नजर लग जाती है ना, या मेरे बच्चों को नजर लग जाती है ना, ये बातें कॉमन सी होती है। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर मेरे कर्माज अच्छे हैं ना, तो मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मेरे कर्म मेरा भाग्य बनाने। तो हमें क्या फोकस करना है? अपने कर्माज पे फोकस करना है ना। और किसी व्यक्ति विशेष की नजर या कोई व्यक्ति विशेष मुझसे ईर्ष्या भी करता है, तो उसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भाग्य जो बन रहा है ना मेरा, उसकी ईर्ष्या उसकी नजर नहीं बना रही, मेरा भाग्य मेरा कर्म बना रहा है। तो मुझे फोकस क्या करना है? मुझे उस व्यक्ति विशेष पे नहीं सोचना है, मुझे अपने कर्माज पे फोकस करना है। मैं सिर्फ अपने कर्म कर सकती हूँ, भगवान ने क्या देना है कब देना है मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटीज हैं, उसको सिंसियरिटी से करना है, बस इतना, बस उसका फोकस इतना ही होता है। तो ये बातें जो समझ चुके होते हैं ना, इसलिए वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। फिर वो फिर आगे क्या श्लोक में, जो शुद्ध है, मतलब जो अपनी प्योरिटी पे वर्क करता है, जो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, प्योर कर लेता है। प्योर मतलब जिसके पांडव 100% स्ट्रॉन्ग हो जाए और कौरव 0% हो जाए, जिसके अंदर का राम 100% हो जाए और रावण 0% हो जाए। मतलब जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, जैसे कि फॉरगिवनेस, दूसरों की मदद करने का स्वभाव, दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, एक एम्पैथी होती है ना दूसरों के लिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और नेगेटिव क्वालिटीज जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जीरो हो चुके हैं। वैसे डिवोटीज भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बताया भगवान ने, जो दक्ष है, मतलब जो डिवोशन में जो एडवांस हो चुके हैं, जो आगे चले जाते हैं, जो दक्ष हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, अपनी सारी ड्यूटीज जो एथिकली परफॉर्म करते हैं, मतलब भगवान के साथ जुड़ने में ना उनकी बुद्धि में एक शार्पनेस आ जाती है, क्योंकि बुद्धि में प्योरिटी आने से मन और इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, उसका फोकस कैसा हो जाता है, जैसे अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी, तो ऑटोमेटिकली जब आपका फोकस एक पॉइंट पर आ जाएगा ना, जब मतलब अर्जुन की तरह हमारा फोकस हो जाएगा, जब उसको अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर फोकस ना एक ही पॉइंट पर आ जाता है। और फिर क्या होता है, फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय हम लोग प्रेजेंट में ज्यादा फोकस कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर कर्मों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अवेयरनेस से हम कर्म करते हैं, कुछ भी हम बोल रहे हो, हम कुछ कर रहे हो, हम सब कुछ फिर अवेयरनेस से करते हैं। तो फ्रेंड, डिवोशन में जो हाईएस्ट स्टेज में होते हैं ना, तो उनके कर्मों की क्वालिटी एक्सपर्ट हो जाती है। तो हम भी थोड़ा थोड़ा डिवोशन में जब आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारे कर्मों की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। फिर वर्ष में क्या बात हो रही है आगे, कि जो चिंता रहित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे केयर फ्री होने की बात हो रही है, केयरलेस की बात नहीं हो रही है। जो डिवोशन में बहुत आगे चले जाएंगे, वो ये समझ जाएंगे कि जब भगवान ने ये भगवद गीता में ये समझा दिया कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल उनका डिपार्टमेंट है ना, भगवान ने कितनी सही चीज हमें समझा दी कि भाई तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने हैं, फलों का डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है। और हम क्या करते हैं, कर्म तो हमने कुछ करने या नहीं करने, फल पे हम पूरा हक जमाते हैं कि नहीं भगवान मुझे ये मिलना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई पहले उसके लिए कुछ जो प्रोसेस है उसको तो अपना लो, वो हम करते नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें उसका फल मिल जाए प्रॉपरली। तो यहीं पे हम गलती कर रहे होते हैं, चिंता भी हमें आती है फलों के बारे में ज्यादा सोचकर, मतलब एक्सपेक्टेशंस बनाई होती है हमने अपनी डिजायर से, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे ये मिलेगा, ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे ये मिलेगा। तो जो डिवोटीज प्योर होंगे, वो कर्म कर रहे हैं भक्ति भाव में भगवान की सेवा के लिए, इसलिए उनको चिंता नहीं होगी। इसके बाद क्या बताया गया वर्ष में, कि फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, जो समस्त कष्टों से रहित है, जिनको कोई कष्ट नहीं है, मतलब जो अंदर से प्रभु से जुड़ जाता है, वो आत्म प्रायण हो जाता है ना, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है, वो परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में चला जाता है। इसलिए वो बाहरी जो भी गतिविधियां हो रही होती है ना, बाहरी जो भी डिस्कम्फर्ट्स मिल रहे होते हैं, दुख मिल रहे होते हैं या सुख मिल रहे होते हैं, उससे विचलित नहीं हो जाता। देखो फ्रेंड, अगर हम मदर टेरेसा की बात करें, जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं था कि उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में, बॉडली लेवल पर, है ना। उनको भी बड़े बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, इतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं थी उन सबकी, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो खुश नहीं थे, है ना। वो बहुत खुश थे, क्योंकि जितनी भी फ्रेंड्स एलिवेटेड सोल्स होती है ना, वो जॉय ऑफ गिविंगनेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, भगवान की सेवा को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हम एक सोल है और हमने एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाना है, है ना। और वो अपना बेस्ट लाइफ का जो भगवान ने हमें दिया है कि तुम बेस्ट कर लो, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट कर लो, तो हम उसको भूल के अपनी दीन दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तो भगवान हमें कह रहे हैं कि बाहरी सर्कमस्टांसिस से हमें इफेक्ट नहीं होना है। फिर आगे क्या कहा कि नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रिजल्ट, वो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मतलब वो निष्काम हो चुके होते हैं। वो एक ही रिजल्ट चाहते हैं ऐसे डिवोटीज की, भगवान की खुशी, भगवान की सेवा और समाज कल्याण। अब जो मदर टेरेसा की हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या पर्पस था, है ना। वो क्या काम कर रही थी, समाज कल्याण, समाज कल्याण करके भगवान को खुश कर रही थी, है ना, भगवान की सेवा कर रही थी वो। इसलिए बाहरी सक्सेस और फेलियर्स उनको प्रभावित नहीं करते, है ना, वो विचलित नहीं हो जाते, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे सक्सेस आए चाहे फेलियर आए। ऐसे डिवोटीज भगवान कह रहे हैं कि मुझे बेस्ट लगते हैं। तो हम सबको बेस्ट बनने की कोशिश करनी है, लेकिन है ये 100% की स्टेज है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, चलते रहेंगे नित्य निरंतर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में नित्य निरंतर उतारते रहेंगे, तो हर एक साल में चाहे हमें 1% फर्क पड़े, चाहे 2% या 10%, तो फ्रेंड्स हम इस तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा पूरा जीवन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, और तभी हम पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं और पॉजिटिविटी भी समाज में फैला सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक लास्ट पढ़ लो ममता जी।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 20। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना लेते हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संगलन रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना लेते हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अब भगवान क्या कह रहे हैं, फाइनली भगवान हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि जो भक्त है ना, वो उनको अत्यंत प्रिय है। मतलब जो भक्ति योग के रास्ते को अपनाते हैं, जो डिवोटीज, भगवान ने इसे अमर पथ कहा है, मतलब भक्ति का पथ अमर पथ है। मतलब जो भक्त मुझे बहुत प्रिय है ना, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित मेरी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अगर कोई भक्ति योग के रास्ते पर चलता है ना, तो उसे प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है ना। तो भगवान कहते हैं कि जिसने मुझको अपना परम लक्ष्य बना लिया है, मुझे प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है जिसने, और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे विश्वास के साथ उस काम में, मतलब मुझे प्राप्त करने की लगन में वो जो डिवोटी लगा रहता है, वो व्यक्ति, वो डिवोटी मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि शबरी को विश्वास हो गया था, शबरी के गुरुजी ने उसको कहा था कि प्रभु उससे मिलने जरूर आएंगे, और जब कहा था ना, तो वो बिल्कुल यंग थी, है ना, और प्रभु कब आए, जब वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। उसे उस बात पर, अपने गुरुजी की बात पर अटूट विश्वास था कि प्रभु जी मुझे मिलने आएंगे। वो रोज प्रभु के आने का रास्ता निहारती थी, रोज फल तोड़ कर लाती थी प्रभु को खिलाने के लिए, हर पल उनका ध्यान करती थी, हर दिन हर पल उसका प्रभु की याद में बीत रहा था कि आज आ सकते हैं प्रभु, आज आ जाएंगे। और जिस दिन नहीं आते, वो रोज रात को सोचती कि आज प्रभु नहीं आए, मेरी भक्ति में ही शायद कोई कमी रह गई होगी कि आज प्रभु नहीं आए, आज मैं और भक्ति करूंगी ताकि कल प्रभु जरूर मेरे घर आए। तो इस तरह उसने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वयं को भगवान में लगा दिया था। पूरी लाइफ उसने भगवान का इंतजार किया कि आप प्रभु मेरे पास आएंगे, है ना। तो एक अटूट विश्वास था उसमें। यही श्रद्धा हमें द्रौपदी में देखने को मिलती है ना। जब आपने देखा होगा महाभारत में कि जब चीरहरण में हो रहा था द्रौपदी का, तो चीरहरण के समय कोई रिश्ता नाता उसके काम नहीं आता, वो सबको पुकारती है, सब गुरुओं को, अपने अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने हस्बैंड्स को, सबको पुकारती है वो, लेकिन कोई रिश्ता नाता उसके काम नहीं आता। पहले खुद से जोर लगाएंगे, फिर हम आसपास के लोगों से हेल्प मांगेंगे, लेकिन फाइनली हमें कहाँ पे जोर लगाना है, हमें प्रभु की भक्ति में अपना टाइम लगाना है। फिर उसने क्या किया, उसने हाथ जोड़कर प्रभु को पुकारा, भगवान को। वो करुण पुकार द्रौपदी की उन्होंने सुनी तो वो दौड़े चले आए। भगवान को क्या पुकारती है, प्रभु अब आपके सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु भी उसके विश्वास को देखते हुए उसे बचाने तुरंत आ जाते हैं, है ना, दौड़ते आते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा भक्त जो मेरे रास्ते में मुझे प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, हमेशा विश्वास रखता है, हर सुख दुख में संभाव रहता है, तो ऐसे व्यक्ति में ऐसा कोई संदेह नहीं रह जाता, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसा भक्त जो मेरे रास्ते में मुझे प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, हमेशा विश्वास मुझ पे रखता है, हर सुख दुख में वो संभाव में रहते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। मतलब उसको एक विश्वास, अटूट विश्वास रहता है कि भगवान है ना मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ही भक्त जो सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आप बता सकते हो कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, और आप कोई अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। मोना जी हरी हरी बोल। सबसे पहले तो श्री हरि का धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार, और साथ में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस रास्ते पे हमें चलना थोड़ा थोड़ा सिखाया, आपने हमें जोड़ा, और हम भगवान जी की बताई हुई दिव्य बातों को हम सीख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सच में आज बड़े दिन बाद आपकी आवाज़ सुनकर ऐसे अंदर से बंदा ऐसे होता है ना कि अंदर मुरझा जाता है, तो जैसे आपकी आवाज़ सुन से खिल जाते हैं। सच में आज वैसा ही लग रहा कि बड़े दिन बाद आज हमने भगवत गीता का जो श्लोक आपने पढ़ाए हैं, तो उनसे मेरी जो लर्निंग बनी है, सच में श्री हरि की शक्ति को हमने की शक्ति को तो हमें पहले भी पता था कि भगवान जी हैं, कहीं ना कहीं हैं, पर बट हम जब मटेरियल चीजों के लिए भगवान से प्रेयर करते थे ना, तो वो गलत बात होती थी। वो अब जाके हम भगवत गीता पढ़ते हुए हमें पता चला, तो भगवत गीता पढ़ते हुए हमने ये जाना कि श्री हरि की शक्ति तो अपरंपार है, वो हर किसी के साथ है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी सिचुएशन आए वो हमेशा खड़े रहते हैं। पर हमें इस बात का, हम मूर्ख बुद्धि इंसान भगवान की बताई हुई बातों को हम अच्छी तरह से सीख नहीं पा रहे थे। तो सच में जिस रास्ते पे हम चले हैं, इनसे हमें ये पता चला कि भगवान की शक्ति अपरंपार है। बस हमें ये बता रहे हैं भगवान कि हमें हर भाव में सब सुख दुख में संभाव रहना है, और ऐसे कार्य हमें करने हैं जो हम किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी से हमारे कर्म, मन कर्म और वचन, ये वर्ड तो हमने सुने थे, मैं अपना सुनाऊं तो सच में बड़ी बड़ी ये टैगलाइन सुनते कि मन कर्म और वचन से किसी का मतलब दुख नहीं दुखाओ, तो वो सही में हम नहीं समझ पाते कि वो मन कर्म और वचन क्या होते हैं। तो ये जो आज के श्लोक हमने पढ़े हैं, इनसे हमें श्री हरि ने समझा दिया है कि हम ऐसे काम करने हैं जिससे हम किसी के मन को, अपने वचनों से किसी को मतलब बुरे वचन बोल के किसी को दुखी ना करें, जिससे सामने कि कोई भी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे, अपने आदमी, हम ऐसी बातें कई बार कर देते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कौन सी बातें कर रहे हैं, कैसे बोलना है। तो भगवत गीता पढ़ते हुए हमें ये सच में श्री हरि की जो हमारी बुद्धि में विराजे हैं, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा जो हमें ज्ञान ले रहे हैं कि हमें किस कौन सी बात किस समय पर किस लोगों के सामने कैसे करनी है, तो श्री हरि का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच में मैं अपना सुनाऊं तो मुझे भी यही था कि जब मैं कई बार छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं लाइफ में, कभी मतलब कई बार हम होता है कि हम अपनी बात मनवाने के चक्कर में तो कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, तो मेरा भी यही था कि मैं भी कई बार ऐसी बातें करती थी फ्रेंड्स। तो जब से मैंने श्री हरि से ये प्रेयर की, राधा रानी से ये प्रेयर की, मेरे अंदर के विकार जो है ये दूर करो प्रभु, और उनसे मैंने प्रॉमिस किया जब भी मैं कहीं गलत बात करूं तो आपने मुझे आगे से मैं ये बात कभी नहीं करूंगी, कोई भी किसी को मतलब दिल दुखाने वाली बात कभी ना करूंगी, तो सच में श्री हरि ने जब मैंने जैसे प्रेयर की उनसे राधा रानी और श्री श्री हरि के आगे, तो मेरे अंदर के विकार धीरे 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 सच में खत्म हो गए। मतलब कुछ ऐसा था कि कई बार होता था कि नहीं हम कोई बात है हम निकाल ही दें गुस्से से, गुस्से में बड़ा से कोई होता ना, कई बार प्यार से कोई नहीं समझे तो हमें होता था कि नहीं हम तो। सच में मोना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भगवान ऐसे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस रास्ते पर नित्य निरंतर चलना है और हमें अपने कर्मों को करते रहना है और उसके फल की इच्छा नहीं रखनी। जो हमें भगवान ने ड्यूटीज दी हैं, जरा सी भी हमें ये रखना कि हमने किसी के लिए कुछ किया है तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान श्री हरि की शक्ति है जो हमसे करवा रहे हैं। उन्होंने हमें चुन के भेजा है किस किस कार्य के लिए हमें करना है, भेजा है उन्होंने, तो ये हम नहीं जानते। अब जब भगवत गीता पढ़ते हमें सब पता चल रहा है कि भगवान श्री हरि की शक्ति है जो हमें उन्होंने जोड़ा है। हम आए हैं, हमें जो ड्यूटी मिली है उसे एथिकली परफॉर्म करना है और कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो सच में भगवान श्री हरि हमेशा हर छोटी छोटी बात पे ऐसे रास्ते दिखाते हैं। तो श्री हरि का बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी, आज की मेरी इतनी लर्निंग, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत ही प्यारी लर्निंग्स बनी है। और बिल्कुल बस हमें फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, हमें अपने आप पे फोकस करना है। कोई क्या कर रहा है या हमारे बारे में क्या इमेज है या हम इसी सोच में लगे रहते हैं, है ना। हमें अपने कर्मास पे बस फोकस करना है और दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है या क्या उसकी इंटेंशन है या वो क्या कर रहा है, हमें उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देना, है ना। हमें सिर्फ वही बात है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता हो या डिवोशन का रास्ता है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता है। हमें अपने आप पे फोकस करना है और कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, इन सब चीजों से बाहर आना है जी। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल मोना दी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आज आपने हमें श्लोक करवाए हैं और आपकी आवाज सुन के जैसे हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर होता है ना, हम सबके लिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मेरे को इतना विश्वास है कि सबके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी आवाज हम सबके लिए एक एनर्जी बूस्टर है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपके मुंह से ये सब सुनना, मतलब कि हमें एक पॉजिटिविटी, कहते हैं ना कि अंदर से पॉजिटिविटी सारी, मतलब कि एक रग रग में दौड़ने लग पड़ती है। आज आपने हमें जो वर्सेस करवाए उससे मेरी जो लर्निंग बनी है वो ये है कि अगर हमें प्रभु श्री हरि की शुद्ध भक्त बनना है तो हमें कोशिश करनी है कि किसी को भी हमारे द्वारा कोई भी दुख तकलीफ या परेशानी ना हो। हमें हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में पॉजिटिवली हैंडल करें और हमें हमारी लाइफ की हर सिचुएशन को ऐसे देखना है जैसे कि प्रभु हमारा टेस्ट ले रहे हैं और हमारे टेस्ट में अच्छी और हमें हमारे टेस्ट में अच्छी तरह परफॉर्म करना है। हमें हमारी बोली और बात करने का ढंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे बात करते हैं, किससे किस वे में बात करते हैं और हम उसे क्या बोल रहे हैं। ऐसे बोलना, ऐसे खुद को ऐसे बनाना है जिससे किसी को भी कष्ट ना हो, कोई हर्ट ना हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रभु श्री हरि के शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे और हमें हमारी लाइफ का परम लक्ष्य ही प्रभु का शुद्ध भक्त बनना है, ना कि दुनियादारी की इच्छाओं में फंसना है। जैसे कि हम पहले जब भी श्री हरि से प्रार्थना करते थे यही बोलते थे कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, हमारी वो विश पूरी हो जाए, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। लेकिन अब मेरी जो प्रायोरिटी है, मैं जब भी श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ मैं हमेशा उनसे यही विश मांगती हूँ कि मेरे अंदर के जो विकार हैं वो दूर करिए और मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। हमारी लाइफ में जो भी दुख सुख आते हैं इन सबके द्वारा प्रभु हमें कुछ ना कुछ संदेश दे रहे होते हैं और हमें प्रभु के इन संदेशों को समझने की कोशिश करनी है। घबराना नहीं है बल्कि हमेशा प्रभु पर एक अटूट विश्वास रखना है। प्रभु के शुद्ध भक्त बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। वो तो आएंगे क्योंकि वो जैसे यहाँ ये क्लाइमेट्स होते हैं हमारे, जैसे सर्दी गर्मी वो सब तो दुख सुख दुख भी आएंगे, हम उन अप्स एंड डाउन्स में इजीली फेस कर, लेकिन होगा ये कि शुद्ध भक्ति से हम इजीली फेस कर पाएंगे इन अप्स एंड डाउन्स को। और अगर हम कभी पैनिक भी हो जाएंगे तो भी जल्दी नॉर्मल भी हो जाते हैं, इसीलिए हमें कभी भी भक्ति मार्ग से पीछे नहीं हटना है अपितु स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाते जाना है। हमें प्रभु की फेवरेट बनना है, और हम प्रभु की फेवरेट तभी बन पाएंगे जब मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट बना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही फोकस करेंगे, दूसरों के कर्मों पर नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। हमें खुद पे फोकस करना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हम किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हमें खुद को प्योर बनाना है, हमें हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, हमें खुद को डिवोशन में एक्सपर्ट बनाना है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना है, खुद को टेंशन फ्री बनाना है और अपना सारा ध्यान प्रभु सेवा में ही लगाना है, ना कि ये मटेरियलिस्टिक इच्छाओं की ओर कि हमें ये मिल जाए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। ये सब हमें हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटीज है निकालनी पड़ेंगी दूर। हमें हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, प्रभु की शुद्ध भक्ति और कुछ भी नहीं। हमें हमारी लाइफ को भक्ति पथ पर ही आगे बढ़ाना है, ना कि दुनिया की झूठी आसक्तियों की तरफ। हमें हमेशा प्रभु की शुद्ध भक्ति के लिए ही अग्रसर रहना है और हमेशा हर सिचुएशन में प्रभु पर अटूट विश्वास रखना है और प्रभु भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स पूजा जी, बहुत ही प्यारी तरह से आपने पूरे श्लोक एक्सप्लेन कर दिए, आई थिंक पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही अच्छी तरह से किया। और बिल्कुल हमें देखो, अब चाहे थ्योरी में हमें बातें पता चल रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हम इन चीजों में आगे बढ़ ही रहे हैं ना। कुछ भी बात होती है या कुछ भी होती है तो मन में आ जाता है, नहीं यार छोड़ो, यार छोड़ो, है ना, ऐसे ये फीलिंग आ जाती है कि छोड़ो यार, नहीं शायद इसको किसी के साथ, मतलब मान लो हमारी कोई बात हो जाती है तो ऐसा लगता है कि शायद वही बात है वो जो हमने पढ़ा कि शायद अभी इसको पता नहीं है, छोड़ो मैंने क्यों अपने कर्माज खराब करने, है ना। तो लेट गो का फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ जाती है। पहले वो उन्हीं बातों में हम उलझे रहते थे और मन में गांठे बना लेते थे, है ना, वो फीलिंग्स बहुत ज्यादा कुछ प्रतिशत में, मैं बोलती नहीं कि 100%, पर काफी ज्यादा ये सब फीलिंग आ चुकी है कि नहीं छोड़ दो यार, है ना। जैसे मैं भगवान की बेटी हूँ तो वो भी भगवान के बच्चे हैं। कुछ भी जो भी हम सीख रहे हैं भगवद गीता में, ये सब भगवान से जुड़ के सब कुछ ये हम सीख रहे हैं, भगवद गीता पढ़ के हम ये सब सीख रहे हैं, है ना। चाहे हम थ्योरी में कुछ बातें हमें पता चल रही है, चाहे हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, लेकिन कुछ बातें पता तो चल रही है जो बिल्कुल ही कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी इससे पहले, है ना। तो भगवद गीता पढ़ के भगवान वैसे क्लियरली जैसे खुद बता रहे हैं कि कैसे मेरे डिवोटीज होने चाहिए, कैसे मैं क्या क्वालिटीज तुम में चाहता हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, तुम क्या करते हो। हम झांके ना अपने अंदर तो कितने विकार लगते हैं, हम देख रहे हैं कि देखो भगवान ने श्लोक में कितना 15-16 वर्सेस मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, क्या चाह रहे हैं भगवान और हम करते क्या है, हम कहाँ चले हुए हैं, हम क्या क्या सोचते रहते हैं, है ना। अपने अंदर झांके तो हमारे अंदर बहुत सारे विकार है, हमें उन विकारों पे प्रैक्टिस करनी है उनको दूर करने के लिए। और बाकियों में जो हम उलझे रहते हैं, दूसरों की बातें, दूसरों की चीजों में जो हम उलझे रहते हैं, दूसरों की बातों में, तो उन चीजों से हमें दूरी बनानी है और अपने आप पे फोकस करना है। थैंक यू सो मच पूजा जी, ब्यूटीफुल लर्निंग्स। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है।
हरी हरी बोल मोना जी, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी कोमल जी, आ रही है आपकी आवाज।
मोना जी आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था, और सबसे पहले जैसे पूजा जी ने बोला बताया कि आज आपकी आवाज सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे वो एक टाइप का एनर्जी बूस्टर मिला हमें, काफी दिन के बाद आपकी आवाज सुनी है। जो आज के सत्संग से मेरी लर्निंग बनी है वो ये है कि भगवान जी ने अपने फेवरेट डिवोटीज के बारे में बताया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें फल अपना कर्म करना है, फल की चिंता के बिना, नो एक्सपेक्टेशन रखनी है, मतलब हमें अपना कर्म करते रहना है। सुख दुख में संभाव, जो व्यक्ति सुख डिवोटी सुख दुख में संभाव रहता है, हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंचे, या मे बी बाय मतलब हमारे बोलने से या हमारे थॉट प्रोसेस से किसी को दुख पहुंचे। और अगर कोई हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है तो हमें विचलित नहीं होना, यही सोचना है कि वो शायद इमेच्योर है, वो भगवान के रास्ते पे अभी नहीं चला है, मतलब वो भी भगवान का ही जो है बच्चा है, मतलब वो अभी भगवान के रास्ते पे नहीं चला, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको लेट गो करना है, लेट गो की फीलिंग लानी है। और हमें अपने अंदर के रावण को खत्म करना है और अपने अंदर के राम को जगाना है, मतलब हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना है और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना है। और इन शॉर्ट कि हमें मटेरियल वर्ल्ड की ड्यूटीज को निभाते हुए भगवान को पाने के रास्ते पे नित्य निरंतर चलते रहना है। और मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूंगी, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार यशोदा माँ जो है वो जो दिए वगैरह वो गंगा मैया में कर रही होती हैं, तो दूसरी साइड पे जो कान्हा जी होते हैं वो दिए को निकाल रहे होते हैं, तो माँ यशोदा माँ कहती है, कान्हा तुम क्या कर रहे हो ये? वो कहते हैं कि मैं माँ दिए निकाल रहा हूँ, कहती है कि तुम कितने को निकालोगे, मतलब इतने सारे दिए तुम कैसे निकाल पाओगे। वो आगे से कान्हा जी कहते हैं कि मैंने सबका ठेका नहीं लेके रखा हुआ, जो मेरी तरफ आएंगे मैं उनको ही निकालूंगा। तो इस मतलब मैसेज से मतलब काफी इसका डीप मीनिंग है कि जो भगवान की तरफ मतलब जाएंगे भगवान जी उनके उनकी तरफ ही मतलब उनका ही साथ निभाएंगे। इससे ये है कि हमें भगवान के रास्ते पे नित्य निरंतर चलते रहना है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स कोमल जी, बहुत ही प्यारी तरह से आपने स्टोरी भी हमसे शेयर की कि वो दियों को बचा रहे होते हैं, निकालने देते बचा रहे होते। तो उन्होंने बोला कि मैंने पढ़ी थी ये स्टोरी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो कि यशोदा मैया ने बोला कि आप कितने को बचा लोगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सबका नहीं ठेका ले रखा। वही बात है ना कि द्रौपदी की स्टोरी हम देखें, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तभी भगवान आए। तो अब वही बात है ना, फर्स्ट जो इनिशिएटिव है वो तो हमें ही लेना है ना। हम चाहते हैं कि वही बात है, हम सीधे रिजल्ट पे जाते हैं कि हमें इसका रिजल्ट मिल जाए, हमने ये काम किया हमें तो इसका रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना चाहिए। या हमें कुछ भी काम ना करें तब भी हमें लगता है कि बेस्ट हमारे साथ होना चाहिए, हमारे कोई दुख ना आए लाइफ में, है ना। और हम भगवान की तरफ तो एक कदम भी नहीं बढ़ाते, है ना। हमें चाहते बस भगवान हमें दे दे दे। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म तो तुम करते हो और मांगते तुम मुझसे हो, है ना। भगवान कितनी डीप बात कहते हैं कि कर्म तो तुम कर रहे हो और मांग तुम मुझसे रहे हो। भाई तुम कर्म ऐसा करो कि मैं तुम्हें खुद से दूं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी खुशी है। तुम वो काम तो करते नहीं, चाहते तुम वो कि जो तुम्हें मिल जाए सब कुछ, ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें वो मिले तो हमें वो काम करने जो प्रभु चाहते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है ना। थैंक यू सो मच कोमल जी, ब्यूटीफुल लर्निंग्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। आज आई थिंक किरण जी की टर्न है, तो किरण जी आप अपना भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आज सच में ऐसे लग रहा है कि इतनी शांति मिली है मन को आपकी आवाज सुन के। सच में सभी ने जो भी बोला कि एनर्जी बूस्टर या उत्साह आ गया, कुछ भी बोलो, इतना मजा आया ना आज सत्संग सुनने का भी। तो ऐसे आप जब भी समझाते हो तो ऐसे मन में बैठ जाता है। तो आज मुझे लगा कि कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, तो आज मैंने ये भी जाना कि सच में भागवत गीता हमारे जीवन की बुकलेट है। कितनी सारी बातें हम ये जो आज हरि जी ने हमें आपने हमें गीता जी के माध्यम से समझाया है, ये सारे हमारे डेली लाइफ में होती हैं। कि जेलसी, द्वेष किसी से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम हर दिन इसी में चलते रहते हैं। बस सुबह होती है ये काम करना है, बस सारा दिन इसी में निकल जाता है हमारा। और भगवान ने बताया अगर मेरी तरफ बढ़ना है तो इन सबसे दूर रहना है, किसी से जेलस नहीं करनी है, हर परिस्थिति में सामान्य रहना है। ये मटेरियल वर्ल्ड, जग, संसार मिथ्या है, इसमें मोह नहीं डालना हमें। कोई क्या कर रहा है इसमें हमें नहीं, हमें सिर्फ प्रभु भक्ति में ध्यान देना है। और अगर हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो भगवान सच में उन दियों की तरह हमें भी उठा लेंगे। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहेंगे कि कल करेंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें नित्य निरंतर प्रभु के बताए हुए वचनों पे, शब्दों पे अमल करके इसी रास्ते में, भक्ति रास्ते पे अपना चलते रहना है, अपने शुद्ध कर्म करते रहना है और प्रभु जी को अर्पित करते जाना है और प्रभु को अंग संग ही मानना है। जो भी सिचुएशन आए हर इच्छा ही समझनी है। आज का भजन मेरा और मैं अब भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांभली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा तेरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांभली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंदी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंदी। तीसरा तेरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांभली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन दरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन दरा। तीसरा तेरा खिचड़ी का खाना, दिल दीवाना हो गया। सांभली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन जी की जय।